الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتنازل الخدمة. اس کلاس کے اندر ہم کتاب سلوک والاحسان، جو کہ تسہیل بہشتی زیور کا ایک چیپٹر ہے، یعنی اصلا بہشتی زیور کا ہی یہ چیپٹر ہے، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں. بریک لینی پڑے لینا پڑے گی، تو اس کو پاز کر لیں پلیز، ذرا چیک کر کے. ٹھیک، تو تسہیل بہشتی زیور کی کتاب سلوک اور احسان میں سے ہم پڑھتے ہیں، جو کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے تزکیہ نفس کے ضمن میں لکھا. تو اس میں شیخ کامل کے ساتھ عامر کا موضوع چل رہا تھا، پیری مریدی کا بیان اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیری مریدی کیا چیز ہوتی ہے، حقیقت میں کیا چیز ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بات کری ہے. شیخ کامل کی علامات، تو اس میں ہم نے بات کری تھی کہ شیخ کامل سے کیا مراد ہے اور شیخ کامل سے کیا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، کہ جب تک کہ ان کی جو ضد ہے یا ان کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ کلیئر نہ کی جائے، تو اس وقت تک وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ شیخ کامل کی جو ہے وہ ہزار صفات بیان کر دیں کہ جو ہے وہ یہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں، وہ یہ زبردست انسان ہوتے ہیں، فلانے ہوتے ہیں، ڈھمکانے ہوتے ہیں، لیکن سننے والے کے ذہن کے اندر جو اس نے ایک بات سنی ہوگی نا، کبھی ایک بات اس نے کہیں پہ سننی ہوگی کہ کامل ذات تو صرف اللہ تعالی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے سن لیا تھا کہیں پہ یا کہیں پہ پڑھ لیا ہوگا. تو اب آپ اس کو جتنی شیخ کامل کی صفات گنواتے رہے نا، اس کے ذہن میں یہی بات اٹکی رہے گی کہ کامل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ شیخ کامل کی در سے آ گئے، شیخ کامل کی در سے آ گئے. صحیح ہے، تو جب تک یہ نہیں سمجھایا جائے گا نا کہ جب یہ شیخ کامل کیا نہیں ہے، تو اس وقت تک شیخ کامل کی صفات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، یا مقصد جو ہے وہ اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ اسے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اٹکی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا، وہ جب تک نہ نکلے تو اس وقت تک جو ہے نا وہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بہرحال، مرشد سے تعلق کے آداب، تو آداب کے اوپر تو بڑا رونا رویا جا رہا ہے آج کل، کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہمیں پتا چل گئی، تعلیم پتا چل گئی ہے، علم حاصل ہو گیا، فیکٹس اینڈ فگرز کا علم حاصل ہو گیا، لیکن آداب جو ہے نا یہ نہیں سمجھ میں آ رہے کہ صحیح آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ غلط آداب پہلے سے اتنے گھسے ہوئے ہیں، اتنے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے اندر، اتنے اٹکے ہوئے ہیں ہمارے اندر، کہ صحیح آداب کی گنجائش ہی نہیں بن رہی، صحیح آداب کی گنجائش ہی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر کلاس میں ہیں اور انمیوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرشد سے تعلق کے آداب کیا ہیں، یہ بھی پڑھ چکے، اور پھر کہ اگر بے دین پیر سے تعلق ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، انہوں نے جو ہے نا وہ نیگیٹو سائڈ، فلپ سائڈ آف دا کوائن، ٹھیک ہے کہ بھئی اچھے پیر کے ساتھ تعلق بننے کے یہ فائدے ہیں، وہ فائدے ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن جب تک برے پیر کے ساتھ تعلق بننے کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بے دین پیر کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، بے دین پیر کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں، یا بے دین پیر صاحب ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ان کے سامنے نیک پیر کی صفات بیان کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، ٹھیک ठीक है, लेकिन जब तक वो बेदीन पीर साहब इनके अंदर से निकलेंगे नहीं, तो उस वक्त तक जो है ना वो नेक पीर साहब की जगह कहाँ से बनेगी? ठीक है, नेक पीर साहब की जगह कहाँ से बनेगी इनके अंदर? तो इसी वजह से हजरत ने बेदीन पीर से ताल्लुक हो जाने की सूरत में क्या करना है ये भी क्लियर कट बता दिया कि ताल्लुक खत्म कर दे, खलास, ठीक है ना, ला की तलवार के नीचे ला करके उसको खत्म कर दे। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक बनाना है ना, तो वो उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक जो झूठे खुदा हैं उनको ला की तलवार, इसको ला इलाहा में जो ला है ना उसको हमारे बशायर कहते हैं, ये एक तलवार है, ला जो है ना ये एक तलवार है, इसके नीचे झूठे खुदाओं को ला के खत्म कर दो, तब कहीं अल्लाह से ताल्लुक बनेगा। नहीं खत्म करना चाहते, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं बन सकता, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं बन सकता, ठीक है ना, यानी बन सकता से मुराद ये है कि जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन सकता, मुकम्मल नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता, है ना, ऐसे ही खाम खा का झूठ मूठ का ताल्लुक हमारा अल्लाह के साथ बना बना रहेगा लेकिन सही ताल्लुक नहीं बन सकेगा। उसी तरीके से हर हर एक के साथ, अब कोई कहे कि जी पीर साहब को आपने खुदा बना दिया और जो उसूल खुदा पे अप्लाई होता है वही उसूल आप पीर साहब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि जब तक झूठे पीरों से ताल्लुक खत्म नहीं करोगे उस वक्त तक पीर साहब के साथ ताल्लुक नहीं बन सकता, तो क्या पीर साहब भी खुदा हैं? तो इसके ऊपर हम जवाब देंगे कि पीर साहब को तो मारे गोली, पीर साहब को तो मारे गोली, अपनी बात ले लें अम्मी हुजूर, आप अपनी बात ले लें, ठीक है ना, कि जब तक झूठी अम्मियों के साथ आपके बच्चे का ताल्लुक खत्म नहीं होगा, वो दूसरों को अपनी अम्मियां कहना नहीं छोड़ेगा, तो आपके साथ उसका ताल्लुक बन सकता है? राइट, जो आपकी दुश्मन अम्मियां हैं यानी मोहल्ले की खवातीन जो कि आपकी दुश्मन है ना, आपकी दुश्मनी हुई भी है उनके साथ, आपने यानी उनकी आपके साथ लड़ाई हुई भी है या आपकी उनके साथ लड़ाई हुई भी है, और आपका जो बच्चा है ना, ठीक है ना, आपका जो बच्चा है, आपका जिगर का टुकड़ा है, आपका लाडला है, वो जाकर के उन खवातीन को जो है ना वो अम्मी 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 पुकारना शुरू कर दे, बेशक ज्यादा टाइम ना लगाए उनके साथ, उनके घर में जाके रहना ना शुरू कर दे, लेकिन अम्मी 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 पुकारना शुरू कर दे, तो क्या ख्याल है अम्मी हुजूर, आपके साथ उसका ताल्लुक अच्छा बन जाएगा, आपको ये चीज जो है वो पसंद आ जाएगी, ठीक है ना, आप कहेंगे ये तुमने किन झूठी अम्मियों के साथ जिनका मेरे साथ दुश्मनी का ताल्लुक है तुमने उनको अपनी माँ बना करके रखा हुआ है, तोड़ करके आओ उन सबके साथ ताल्लुक, तब जो है ना मेरे साथ तुम्हारा प्यार और मोहब्बत और असली ताल्लुक बनेगा, ठीक है। तो अब कोई कहे कि जी आपने अम्मी हुजूर अपने आप को खुदा बना लिया है, आप अपने आप को खुदा बना लिया है कि जो उसूल खुदा पे अप्लाई होता था वही उसूल जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गया, आपने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं, मैं खुदा को थोड़ी बन रही हूँ, मैं तो सिर्फ माँ बन रही हूँ, क्योंकि माँ जो है ना वो बच्चे की असल जो मुखलिस होती है, जो असल तरबियत करने वाली, जो असल तालीम देने वाली है, तालीम भी देने वाला, तालीम देना भी माँ का काम है क्या? ये तो स्कूल का काम है, ये तो स्कूल का काम था, जबी तो हम तालीम तो स्कूल के हवाले और बाकी जो है ना वो खाना पीना अपने हवाले, ठीक है, वो भी जब इसी तरह मामला चलता रहता है तो इवेंचुअली खाना पीना भी फिर स्कूल के ही हवाले हो जाता है ना, स्कूल वाले ही फिर लंच भी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल वाले फिर सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेस्ट के अंदर स्कूल में सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, अम्मा से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती, तो वी जस्ट हैवन रीच देयर येट, हम अभी तक वहां पे बस पहुंचे नहीं है, इसी वजह से हमारी अम्माएं अभी भी खाना, अभी वो क्या नाम है, कमाला हैरिस, नाम सुना आपने कमाला हैरिस, ये जो है ना वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनने जा रही है, हो सकता है बन भी जाए, पहली दफा अमेरिका की कोई औरत, खातून औरत जो है ना वो प्रेसिडेंट भी बन जाए, शायद मुझे लगता है बन जाएगी या बना देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि औरतों को एम्पावर करना है ना, दुनिया को दिखाना है कि हमने औरतों को सही मानों में एम्पावर कर दिया है, तो अमेरिका की प्रेसिडेंट अगर औरत बन जाएगी तो फिर तो औरतों की एम्पावरमेंट जो है वो कामिल हो जाएगी, राइट। तो वो कमाला हैरिस का इंटरव्यू के बारे में कोई हमें बता रहा था कि उन्होंने कमाला हैरिस का इंटरव्यू सुना, ठीक है, कहाँ से कहाँ बात निकल गई लेकिन वहीं पर है, हकीकत में तो वहीं पर बात है जहाँ से चली थी, तो कमाला हैरिस साहिबा जो है ना जो कि अमेरिका की प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई हुई है, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो सुबकदोश हो गए हैं, उनके इतने बुढ़ापा और इतनी सीनाइलिटी आई हुई थी कि या वो प्रेसिडेंट बाकी नहीं बच सकते, बिलाकर मान लिया उन्होंने इस बात को। तो कमाला हैरिस साहबा कहती हैं कि जब हम अमेरिका में आए ना, तो मेरी माँ जो थी ना वो 19 साल की उम्र में अमेरिका आ गई थी, और मेरा जो नाना था वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव किस्म का साउथ इंडियन लेकिन प्रोग्रेसिव बहुत था। उसने 19 साल की उम्र में मेरी माँ को अमेरिका भेज दिया था साइंसदान बनने के लिए। तो वो अमेरिका आई, बड़ी जबरदस्त किस्म की साइंसदान बनी, लेकिन जो है ना वो रोजाना सुबह को फ्रेश इडली बना करके जाती थी हमारे लिए, फ्रेश है ना, सांबर इडली जो साउथ इंडियन खाने होते हैं, ठीक है, तो वो रोजाना बना करके जाती थी। फिर वो जाती थी, कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, और फिर उसके बाद जॉब करती थी, और वो सब कुछ करती थी। यू कैन डू इट ऑल, राइट, शी कुड डू इट ऑल। तो वो मेरी माँ थी, राइट। कमाला हैरिस साहिबा जो है वो फखर से बयान कर रही है कि वो मेरी माँ थी, हु कुड डू इट ऑल, ठीक है, जो कि सब कुछ कर सकती थी, जॉब भी कर सकती थी, यूनिवर्सिटी भी जा सकती थी, तहकीक रिसर्च भी कर सकती थी, और जो है ना वो हमें साउथ इंडियन खाने बना करके भी खिला सकती थी, ठीक है। तो अम्मा पुराने जमाने में खाने भी बना के खिलाया करती थी, लेकिन उसके बाद फिर अगला दौर क्या आया अमेरिका के अंदर, ये आप बता दें। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट ऑल, ठीक है, यू कैन डू इट ऑल क्या मतलब, घर के अंदर का भी काम तुम कर सकती हो और घर के बाहर का भी काम तुम कर सकती हो। ये पुराना जमाना था अमेरिका का। इस वक्त कौन सा जमाना है अमेरिका यूरोप का? जी, आप में से किसी को तो आता होगा जवाब। यू कैन डू इट ऑल, ये जमाना अब गुजर गया। अब कौन सा वाला जमाना है? फेमिनिज्म का। तो फेमिनिज्म को इन अल्फाज के अंदर पिरोएं, इन अल्फाज के अंदर यू कैन डू इट ऑल को पिरोए, फेमिनिज्म फेमिनिज्म को इन अल्फाज में पिरोए, तो ये अल्फाज थोड़े से तब्दील हो जाएंगे। वो क्या? जी, यू शुडंट हैव टू डू इट ऑल, नहीं, यू शुडंट हैव टू डू इट ऑल भी ठीक है, एक्चुअली ये भी सही है, ठीक है, लेकिन बस एक लफ्ज को चेंज करने से फेमिनिज्म बन जाएगा, वो ये होगा यू वाई शुड आई डू इट ऑल, सही है, यू कैन डू इट ऑल। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। नहीं, जो बिल्कुल अल्टीमेट फेमिनिज्म का जो अल्टीमेट फॉर्म है ना, ये तो पाकिस्तानी फेमिनिज्म, आप जो बयान कर रही हैं ना, ये पाकिस्तानी फेमिनिज्म है, ये इंडियन फेमिनिज्म है जो आप बयान कर रही हैं। मैं अमरीकी फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ, जहां पे अमरीकी फेमिनिज्म पहुंच चुका है, वो ये है यू कैन, और आप लोगों ने ये बाकायदा पढ़ा भी है और बाकायदा क्लास हुई है इसकी, आपने से अक्सर लोग उसकी क्लास उस क्लास को अटेंड भी किया था, ठीक है ना, बल्कि एक ने तो पढ़ाया भी था उस क्लास को। यू कैन हैव इट ऑल, यू डोंट हैव टू डू इट ऑल एनी मोर, यू कैन हैव इट ऑल, ठीक है ना। किसका कॉल था वो? कॉस्मोपॉलिटन वालों का था या सू एलन बोल्डर का लिखा हुआ कॉल था? यू कैन हैव इट ऑल, वी विल गिव यू ऑल, वी विल फीड यू ऑल, ठीक है ना, यू कैन हैव ऑल द फन, ठीक है ना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली यू स्टिल नीड टू डू एवरीथिंग, यू स्टिल नीड टू डू एवरीथिंग, लेकिन यू डोंट नीड टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम, बेसिकली, ठीक है ना, वरना तो दफ्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी पूरी पूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, ये धोखा है बेसिकली, दिस इज नो रियलिटी टू एनी, देयर इज नो रियलिटी टू एनी, दिस सारा का सारा धोखा है, लेकिन अल्फाज को मैनिपुलेट करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और सबसे ज्यादा धोखा किसको देते हैं? औरतों को देते हैं। सबसे ज्यादा धोखा लगता किसको है? औरत को लगता है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है कि औरत जज्बात से मगलूब होती है, उसके दिल में अल्लाह ताला ने माल पैसे और चकाचौंध की जो है ना वो मोहब्बत रखी हुई है, तो इस वजह से वो इन धोखों में ज्यादा आसानी के साथ, ज्यादा तेजी के साथ आ जाती है, और फिर जो है वो कवाम साहब जो है ना वो पीछे पीछे उनके वो भी आ जाते हैं इस धोखे के अंदर। बहरहाल, तो ताल्लुक खत्म कर दो। अम्मा से बात शुरू हुई थी, बल्कि बात तो शुरू हुई थी पीर साहब से कि झूठे पीरों से ताल्लुक खत्म करेंगे, तब जो है वो सच्चे पीर से ताल्लुक बन सकेगा। जिस तरह अल्लाह से ताल्लुक बनेगा जब झूठे खुदाओं से ताल्लुक को खत्म करेंगे, और जब माँ के साथ ताल्लुक बनेगा जब झूठी माओ के साथ ताल्लुक को खत्म करेंगे। तो देर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स अबाउट इट, प्योर सिंपल लॉजिक। अगर किसी को एतराज है या समझ में नहीं आ रही बात तो वो पूछ लिया करे। आगे फरमाते हैं कि जी मुरीद बल्कि हर मुसलमान के रोजमर्रा जिंदगी के आदाब, ठीक है, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी ये क्या आदाब है। तो उसमें हम 17वें आदाब को आज पढ़ना था कि नमाज को अपने वक्त पर एहतमाम से अदा करने की पाबंदी करें। नमाज को अपने वक्त पर का मतलब क्या होता है कि जो शरीयत ने नमाज का अव्वल वक्त से लेकर के आखिर वक्त, ठीक है ना, हर नमाज का एक अव्वल वक्त होता है और एक आखिर वक्त होता है। हजरत ने यहाँ पे अव्वल वक्त नहीं लिखा है, राइट, अपने वक्त लिखा है, अव्वल वक्त नहीं लिखा है, अपने वक्त। अपने वक्त का मतलब क्या होता है कि कजा ना करे, जोहर की नमाज को असर के वक्त में ना पढ़े, असर की नमाज को मगरिब के वक्त में ना पढ़े, फजर की नमाज को जोहर के वक्त में ना पढ़े, ठीक है ना, बल्कि फजर को फजर के अपने वक्त के अंदर पढ़े, जोहर को जोहर के अपने वक्त के अंदर पढ़े। अव्वल वक्त अगर पढ़ सकती है तो सबसे अच्छा है, यानी शुरू में पढ़ ले, बाद में जो है वो जो दीगर काम वाम है वो बाद में अगर कर सकती है तो वो बाद में कर ले, ठीक है ना, बाद में कर ले। लेकिन अगर बाद में नहीं कर सकती है तो वो करके नमाज को उसके अपने वक्त में पढ़े, नमाज कजा करने की इजाजत नहीं, ठीक है ना। ये शरीयत ने जो एंड लिमिट लगाई है ना, वो एंड लिमिट जो है वो इसलिए लगाई है कि नमाज पढ़नी जरूरी है, ठीक है ना, और नमाज एंड लिमिट से पहले पहले तक पढ़ ही जा सकती है। औरत के ऊपर ना मस्जिद जाना वाजिब है, ना औरत के लिए जमात से नमाज पढ़ना कि घर में जमात करनी लाजमी है, नहीं, अकेली औरत नमाज पढ़ेगी, नमाज अके औरत जो है वो अकेली पढ़ेगी, मर्द के ऊपर वाजिब है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़े। मस्जिद जाना वाजिब नहीं है हर मर्द के ऊपर, मस्जिद जाना वाजिब नहीं है हर मर्द के ऊपर, लेकिन जमात से पढ़ना हर मर्द के ऊपर वाजिब है, आकिल बालिग मर्द के ऊपर, ठीक है, जमात से नमाज पढ़ना। मस्जिद उसके ऊपर वाजिब है कि जिसका घर मस्जिद से इतना करीब हो कि अगर मस्जिद में बगैर लाउड स्पीकर के अजान होती तो उसको घर तक आवाज आती, तब उसके ऊपर मस्जिद जाना भी लाजिम है, यानी वाजिब है, यानी नहीं जाएगा तो गुनाह मिलेगा, वरना जमात से नमाज पढ़ना तो जमात के लिए उसको एक और मुसलमान आकिल बालिग की जरूरत होती है, चाहे वो उसकी अपनी बीवी क्यों ना हो, ठीक है। तो नमाज को जो है ना वो वक्त के अंदर पढ़ना है, कजा नहीं करना। बहुत सारी औरतें काम काज या दीगर अपनी मशगूलियात की वजह से नमाज ही कजा कर देती, ठीक है ना, और समझती हैं कि जी उसके बगैर ही जो है ना वो उनके मसले हल हो जाएंगे। भाई नमाज अगर आपकी नहीं हो रही है ना वक्त के अंदर, तो फिर तो आप रहने दें मसलों को हल करने, फिर आप तो मसले हल नहीं हो सकते, आप तो मसले क्रिएट कर रही हैं, नए मसले रोजाना हर नमाज के वक्त में जो आप नमाज छोड़ रही हैं तो नए मसले आप क्रिएट कर रही हैं, तो पुराने मसले कहाँ से हल होंगे, नए मसले क्रिएट हुए चले जा रहे हैं। तो ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने कि अजान हो जाने के बाद नमाज लेट से पढ़ने से भी गुना होता है। अभी कितनी, अभी क्या बोला है, सुना आपने, ठीक है, नहीं, लेट पढ़ने से गुना नहीं होता। अगर आप किसी जेन्युइन काम के अंदर लगी हुई थी, भाई लेट पढ़ने का मतलब समझें, दिमाग के अंदर इसको फिट करें इस बात को कि लेट पढ़ने का मतलब है कजा कर देना, ठीक है ना, कजा कर देना, वरना शरीयत ने नमाज की इब्तदाई और इंतहाई बाउंड्रीज किसी वजह से बनाई है, खामखा में नहीं बनाई गई, खामखा में नहीं बनाई गई, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पहले दिन हर नमाज के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के पढ़ाया नबी अलैहिस्सलाम को, फिर दूसरे दिन तशरीफ लाए, हर नमाज का जो आखिर वक्त था उसके अंदर नमाज पढ़ाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, तो उम्मत के लिए पूरी की पूरी रिलैक्सेशन है। अब आपके ऊपर जमात है नहीं, भाई ये सारी बात इसलिए की जा रही है कि आपके ऊपर जो जो जिस सिचुएशन के अंदर आप है ना, आप उस सिचुएशन को मैसअप ना करें, ठीक है कि भाई मैं अब तो अजान हो गई है, अब तो जो है ना वो सास अम्मा के साथ जो है वो मिल करके काम करना था, और जो है ना वो आपने सास के साथ जो है वो यानी अपनी दीनदारी झाड़ने के चक्कर में, ठीक है ना, दीनदारी झाड़नी शुरू कर दी, या नहीं, अजान हो गई है, मुझे तो जाने नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब सास अम्मा जो है वो आगे से कि क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, राइट। तो ये जो है ना वो नमाज के बहाने बेसिकली मेरी बेइज्जती कर रही है ना। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने के बहाने जो है ना ये मेरी बेइज्जती कर रही है, ठीक है। तो आप चलेंगी नमाज पढ़ने के लिए, और फिर आपके घर के अंदर एक नई मुसीबत शुरू हो गई जो पहले नहीं थी, इससे पहले नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से बात को समझें, बात पुरानी बातें अटकी हुई होती है ना दिमाग के अंदर, फिर वो निकल के नहीं दे रही होती, ये सारा का सारा मसला है, ठीक है। बात को समझें, आप मर्द नहीं हैं, पहली बात। आपके ऊपर वाजिब नमाज यानी जमात के साथ पढ़ना वाजिब नहीं है, मस्जिद जाना आपके लिए वाजिब नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर नमाज पढ़ना वक्त के अंदर वाजिब है, नमाज पढ़ना वक्त के अंदर वाजिब है, और उसी तरह आपके ऊपर घर बनाना भी वाजिब है, आपके ऊपर घर वालों के साथ बनाना भी वाजिब है, और आपके ऊपर औलाद को बनाना भी वाजिब है, ठीक है। तो ये जो दूसरे वजूब है ना उनको हम भूल कर जाते हैं अपने दीनदारी के चक्कर में, हम दूसरे वजूब को जो है ना वो गोल कर जाते हैं, वो हम समझते हैं कि वो हमारे ऊपर वाजिब ही नहीं है, बस हमारे ऊपर जो है ना वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना वाजिब है। अल्लाह ताला ने इतनी तो अकल दी है, इतनी तो नहीं कि बस नहीं, हम तो बस नाकसुल अकल हैं, तो हमारे पास किसी बात को समझने की अकल नहीं है, अब तो नहीं, जो समझना चाहती है बड़े अच्छे से समझती है, और जो नहीं समझना चाहती है ना वो नहीं समझ करके देना, वो तो जिद होती है ना, फिर वो जिद होती है ना, फिर वो, ठीक है ना। तो अकल इतनी है ना कि ये चार पांच वाजिबों को जो है वो एक साथ याद रख सकें कि भाई ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है मेरे ऊपर, और मर्दों के ऊपर तो इससे भी ज्यादा वाजिब है। ये नहीं कि मर्दों के ऊपर ये इतने सारे वाजिब नहीं है, सिर्फ औरतों के ऊपर इतने सारे वाजिब है, नहीं, मर्दों के ऊपर आपसे भी ज्यादा चीजें वाजिब है, ठीक है। तो नमाज को वक्त पर एहतमाम से अदा करने की पाबंदी करे, सही से वजू करे, सही से तहारत हासिल करे। एहतमाम का मतलब क्या होता है? तहारत, ठीक है ना, यानी हैज से जिस तरह शरीयत ने निकलने का तरीका बताया है उस तरह से हैज से निकले, यानी गुसल जो है वो अपने फराइज वाजिबात के साथ अदा करे, गुसल करे, ठीक है ना। तहारत के अंदर यानी क्या कहते हैं, क्या लफ्ज था ना, बहुत ज्यादा, यानी तहारत में ज्यादा एहतमाम कर, ये अच्छी बात है, ये पसंदीदा बात है कि अच्छे से तहारत हासिल करना, ठीक है ना। तो तहारत में अगर, अच्छा, ओसीडी एक दूसरी एक्सट्रीम है, ओसीडी मत बन जाए, यानी नफसियाती मरीज मत बन जाए कि बस धोए धो रही हैं तो धोई चली चली जा रही हैं, ठीक है ना, वो उसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना, कि वो है ना वो धो रही हैं तो बस धोई चली जा रही है, धोई चली जा रही है, धोई चली जा रही है ना, सफाई कर रही है तो करी चले जा रही है, करे चले, एक ही चीज को जो है ना वो 10-10 मरतबा डस्टिंग कर करके जो है वापस रख रही है, ये नफसियाती मर्ज है, ये नहीं कह रहे, कह ये रहे हैं कि तहारत हासिल करना, नजासत से तहारत हासिल करना, इसके अंदर ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत है, ज्यादा करने की इजाजत है, बल्कि ज्यादा करने की इजाजत। वुजू के अंदर अगर आप 3 से ज्यादा करेंगे तो ये इसराफ बन जाता है, इसराफ। वुजू, वुजू से आप तहारत हासिल नहीं करते हैं, नजासत से तहारत वुजू के जरिए से हासिल नहीं की जा रही होती है, जो नजासत, अब ये पूरा का पूरा किताब तहारा की डिस्कशन मैंने नहीं करनी है, लेकिन अगर आप नजासत में हैं, वो गलीजा नजासत है, हैज है, निफास है, जनाबत है, तो उसमें से जो है ना वो अच्छे से बाहर निकलना है। वुजू जो है वो सिर्फ यानी खफीफा से बाहर निकल, खफीफा का तो लफ्ज एक्चुअली प्रॉपर नहीं है, लेकिन हदस, ठीक है ना, उससे बाहर निकलने के लिए वुजू करना होता है, ठीक है, उसके अंदर इसराफ नहीं करना है, वुजू में इसराफ की इजाजत नहीं है, तहारत में इसराफ का मसला नहीं, तहारत में इसराफ का मसला, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज है, चाहिए। तो एहतमाम का जो लफ्ज इस जुमले के अंदर आया ना, इसका मतलब ये है कि नजासत से सही तरीके से बाहर निकलना और वुजू जो है ना वो सुन्नत तरीके के ऊपर वुजू करना और फिर एहतमाम से नमाज अदा करना, यानी तिलावत सही करना गलत तजवीद के साथ, यानी जो जो बड़ी गलतियां होती हैं तजवीद की, तो लहने चली इसको कहते हैं, उस तरह से तिलावत ना करना, ठीक है, और यानी तिलावत सही करना, और जो अरकाने नमाज हैं उनको सुन्नत तरीके से अदा करना, यानी ध्यान के साथ नमाज के अरकान अदा करना, ध्यान के साथ नमाज के अरकान अदा करना, ये बात हमें नहीं पता होती। हम नमाज में दिल लगने को समझते हैं कि हम अर्श पे पहुंच जाएं, अल्लाह अकबर कहने के बाद हम जन्नत की सैर करना शुरू हो जाएं इमेजिनरी तौर पे, या अर्श इलाही के ऊपर पहुंच जाएं इमेजिनरी तौर पे, या काबतुल्ला के अंदर पहुंच जाएं, ये हमारे नजदीक ना नमाज में ध्यान कहलाता है, हालांकि ये नमाज में ध्यान नहीं है। नमाज में ध्यान करने का मतलब ये नहीं है, नमाज में ध्यान करने का मतलब क्या है कि आप जो अफ़ाले नमाज कर रही हैं उसमें आपका ध्यान हो कि मैं अल्लाह अकबर कह रही हूँ, क्या मैं सुन्नत तरीके से अल्लाह अकबर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैंने जो हाथ बांधा हुआ है औरतों के लिए जो सुन्नत है, उम्महातुल मोमिनीन वाली सुन्नत, नबी अलैहिस्सलाम वाली सुन्नत नहीं, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात वाली सुन्नत, क्या मैंने उस सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधा है या नहीं बांधा है, ध्यान रखना, रुकू किया है उम्महातुल मोमिनीन वाली सुन्नत के मुताबिक रुकू कर रही हूं या सऊदी औरतों की तरह रुकू कर रही हूं, राइट, और कैसे जो है वो मेरी, अच्छा मेरी निगाह किधर है, क्या उस जगह पर मेरी निगाह है जहां पे सुन्नत तौर पे निगाह होनी चाहिए या नहीं है, ये है नमाज में ध्यान का होना, क्या मुश्किल काम है इसके अंदर ये बताएं, इसके अंदर कोई आपको पीएचडी करना है नमाज के अंदर, इसके अंदर आपको नमाज के ऊपर जो है वो लंबी लंबी क्लासेस लेने की जरूरत है, एक दो क्लासेस से जो है अभी बातें सीख सकती हैं, बल्कि क्लासेस भी नहीं, वर्कशॉप टाइप की कोई, तो आप किसी किसी ऐसी औरत के साथ जो है वो आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना पढ़ना सीख लें, दो क्लासेस लगेंगी ज्यादा से ज्यादा, तीन चार क्लासेस लग जाएंगे इसके अंदर। हाँ, तिलावत को सीखने के लिए कि तजवीद आपकी दुरुस्त हो जाए, आप बिल्कुल उल्टा सीधा जो है वो कुरान शरीफ ना पढ़ रही हूँ, उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ जाएगी, लेकिन एक सूरत सीख लें, एक सूरत जो कि आप सही तजवीद से अदा कर सकती हूँ, उसी एक ही सूरत को नमाज के अंदर अदा पढ़ लिया करें जब तक कि दूसरी सूरत ना सीख लें, जब दूसरी सूरत सीख जाए सही तजवीज के साथ तो फिर दूसरी सूरत भी जो है वो दूसरी रिकत के अंदर पढ़ लें, वरना एक ही सूरत को हर रिकत के अंदर पढ़ करके नमाज हो सकती है, ठीक है, एक ही सूरत को हर रिकत के अंदर पढ़ के भी नमाज अदा हो जाती है, ठीक है, तो तजवीद को आहिस्ता आहिस्ता आप दुरुस्त करती रहें, जैसे जैसे आपकी सूरतें ठीक होती जाएं वैसे वैसे आप सूरतों को अपनी नमाज के अंदर ऐड करती जाएं, ठीक है, तो इसको जो है ना वो उतना आसाना बनाए नमाज सीखना, ये तो बिल्कुल बुनियादी चीज है और इससे तो मुसलमान का इबादत शुरू होती है ना। मेरे घर में सभी कहते हैं, कहते थे कि जल्दी नमाज अदा कर लेना चाहिए वरना गुनाह होता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर आप फजूल काम के अंदर लगी हुई हैं तो जल्दी नमाज पढ़ लें, अगर फजूलियात के अंदर लगी हुई है ना तो जल्दी नमाज पढ़ लें, फिर आप देर से नमाज ना पढ़ें, ठीक है। हुक्मी नजासत नॉट हकीकी नजासत, हाँ नजासत तो हुक्मी से निकलने के लिए वजू करते हैं जो, अच्छा तो नमाज को अपने वक्त पर एहतमाम से अदा करने की पाबंदी करें, ये क्या है मुसलमान के रोजमर्रा जिंदगी के आदाब। अच्छा 18वां पॉइंट लिखते हैं कि दिल या जुबान से हर वक्त अल्लाह को याद करता रहे, किसी वक्त गाफिल ना हो, अल्लाह ताला से किसी वक्त गाफिल ना हो, दिल में अल्लाह ताला का ध्यान रहे और जुबान भी जो है वो जब कुछ और काम नहीं कर रही है तो वो अल्लाह का जिक्र करे, ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अगर आपने माशाल्लाह सिलसिले के अंदर इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ है तो जो वजीफे बताए जाते हैं सबसे पहले इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ, ये कसरत से जुबान के ऊपर लाती रहे और पढ़ती रहे। और जब जो है वो इस्तिग़फ़ार पढ़ पढ़ करके अब दिल चाहे कि अब मैं कोई और जिक्र करूँ, दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, अच्छा मैं कोई और जिक्र करूँ, कलमा तैयबा, ठीक है, कलमा तैयबा का जिक्र कर लें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वबिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, ठीक है। तो जुबान से भी अल्लाह ताला को याद करता रहे और दिल से भी अल्लाह ताला को याद करता रहे। दिल से अल्लाह ताला को याद करने का मतलब, जैसे कि अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे, कि सबसे पहला इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे, दिल के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी के इरादे ना बने, ये जो कहते हैं ना इल्म और इरादे से गुनाह ना करे। इल्म और इरादे से गुनाह करने का मतलब क्या होता है कि दिल में इरादा बना रही है कि अब मैं जाकर के गुनाह करूं, ठीक है, तो दिल में गुनाह का इरादा बनाने का मतलब क्या है, ये दिल गाफिल है, ये दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, इसके अंदर तो अल्लाह की नाफरमानी के इरादे बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यानी दिल से अल्लाह को याद करने का दूसरा मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर दिल ही दिल में शुक्र अदा करते रहे, दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रहे, जब औलाद को देखे, जब अपने घर की तरफ ध्यान जाए कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे घर अदा करवाया, राइट, कितनी ऐसी औरतें हैं कि जिनको घर नसीब नहीं है, ठीक है, तो उनके ऊपर शुक्र अदा करे, चाहे जुबान से अदा करे चाहे वो खाली दिल ही दिल के अंदर शुक्रगुजार हो, ठीक है। और अल्लाह ताला के साथ राज़ो नियाज़ करना, अल्लाह ताला के साथ बातचीत करना, कोई मुसीबत आ गई, कोई मसला आ गया, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह गुस्से निकलने की कोई सबील बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, अल्लाह ताला के साथ राज़ो नियाज़ करना इसको कहते हैं, ठीक है। कोई इस्तग़फार भी पढ़े और गुनाह भी करे तो ये कैसे ठीक होगा, कोई अगर ये काम कर रहा है ना तो सबसे अच्छा काम तो नहीं कर रहा लेकिन सबसे बुरा काम भी नहीं कर रहा, सबसे अच्छा काम भी नहीं कर रहा कि गुनाह भी कर रहा है और इस्तग़फार भी पढ़ रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा काम तो ये है कि गुनाहों से बचे। सबसे बुरा काम क्या है कि गुनाह कर रहा है लेकिन अल्लाह ताला से माफी नहीं मांग रहा, ये सबसे बुरा काम। और दरमियाने दर्जे का काम क्या है कि गुनाह भी कर रहा है और माफी भी मांग रहा है, ठीक है। तो अब अगर कोई और ये काम कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ें, भाई अल्लाह ताला से माफी तो मांग रहे हैं, इस्तग़फार तो कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देंगे किसी ना किसी दिन, ठीक है। अब खुद अगर आप ये काम कर रही हैं तो फिर सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करें कि भाई मैं गुनाह को छोड़ करके इस्तग़फ़ार करूंगा, गुनाह छोड़ने की दुआ भी करते हैं, कोशिश भी है, पर लोगों से मिलने के बाद किसी की बुराई हो ही जाती है, लोगों से मिलने के बाद किसी की बुराई हो ही जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। और इसके लिए जो हमारे मशायख राखवा वगैरह बताते हैं ना तो उसकी भी थोड़ी कोशिश करें ताकि जो है वो आपको तकवा के ऊपर इस्तेकामत नसीब हो जाए, ये तो मुराकबा जो है ना वो एक मेहनत है जिसको कि अगर सही तरीके से आप करेंगी तो गुनाहों की नफरत पैदा हो जाएगी और फिर किसी से मिलने की बात जो है ना वो आप तो उस वक्त भी फिर गुनाह से बचना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अच्छा 19वां पॉइंट कि अगर अल्लाह का नाम लेने से मजा आए, दिल खुश हो तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, यानी अल्लाह का नाम लेने से वाकई दिल के अंदर एक तस्कीन पैदा हो रहा है, एक खुशी पैदा हो रही है, तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। ठीक है, यानी ये जो तस्कीन पैदा हुई है ना, ये मेरे कमाल की वजह से मेरे दिल में ठंडक पैदा नहीं हो रही अल्लाह का नाम लेने से। ऐसा भी तो होता है ना कि जी अल्लाह का नाम लिया और जो है वो दिल में ठंडक पैदा हो गई। अब जो है ना वो शैतान इस तरफ ले जाएगा कि हाँ देखो तुमने कितने अच्छे काम किए हैं, और तुमने जो है वो इतना जिक्र किया, तो इस वजह से अब देखो तुम्हारे दिल के अंदर ठंडक पैदा हो गई, या तुम्हें जो है वो अच्छा लग रहा है। तो शैतान ऐसे मौके भी पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, तो शैतान का जो सद्देबाप कैसे करना है कि इसके ऊपर, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने अपने नाम के साथ मेरे दिल की तस्कीन को, ठीक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा रहा है। ये जब ये लफ्ज शुक्र का पढ़े ना, जब भी ये लफ्ज शुक्र का सुने, तो इस बात को याद रखें शुक्र किस चीज को कहते हैं, शुक्र किस चीज को कहते हैं। ठीक है, शुक्र ये उस कैफियत को कहते हैं कि जब आप किसी चीज को जो कि आपको मिली है, किसी चीज को जो कि आपको मिली है, उसको अपना कमाल ना समझे, अपना हक ना समझे, अपना हक और अपना कमाल ना समझे, तब ही आप शुक्र अदा कर सकते, तब ही आप शुक्र अदा कर सकते, वरना शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर आप अपना हक समझ रहे हैं कि तो मुझे मिलना ही था, आई वर्क फॉर इट, मैंने इसके लिए मेहनत करी थी, तो आई डिजर्व इट। अब अगर आप थैंक यू कह रहे हैं किसी को उस चीज के देने के ऊपर, अगर आप जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो ये झूठा शुक्रिया है, ये झूठा थैंक यू है, ये सिर्फ रस्मी थैंक यू है। और रस्मी थैंक यू, झूठा थैंक यू, राइट, ये बंदों के साथ तो चल जाएगा, ये बंदों के परवरदिगार के साथ नहीं चल सकता, बंदों के परवरदिगार के साथ नहीं चल सकता। ठीक है, तो जब तक दिल के अंदर ये एहसास ना हो कि ये जो चीज मुझे मिली है ना, आई डिड नॉट डिजर्व इट, ये मेरा हक नहीं था, तब ही आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, वरना नहीं। तो इस दिमाग से, अपने दिमाग से जो है ना वो इस सोच को बाहर निकालना जरूरी है कि आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। ठीक है, तो शुक्र का लफ्ज जहां भी पढ़ें, शुक्र का लफ्ज जब भी सुने, इस बात को याद रखें कि ये तो उसी वक्त हो सकता है कि जब जिस चीज पर शुक्र अदा करना है उसको समझा जाए कि ये मेरे बस में नहीं था, ये मेरा हक नहीं था। ठीक है, अच्छा, 20वीं बात, के बात नरमी से करे, यानी दूसरों के साथ जो है ना वो नरमी का बर्ताव करे, नरमी के साथ बात करे। और अब ये जो नरमी के साथ बात करना है ना, तो इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, औरत है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा था बात नरमी से करे, तो अब ये गैर महरम मर्द से भी नरमी से बात करती है, क्योंकि यहाँ तो नहीं लिखा हुआ कि औरत से नरमी से बात करो, मर्द से नरमी से बात ना करो। ठीक है, बहशी जैवन में तो ये बात नहीं लिखी हुई, तो क्या अब जो है वो आपने, भाई अल्लाह ताला का हुक्म है मर्दों के साथ नरमी से बात ना करो, पर्दे के अहकाम के अंदर ये। ठीक है, तो हर चीज के अंदर फिर है ना वो, यानी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, खुसूसन बड़ों के कलाम के लिए, बड़ों के कलाम को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तफसीर की जरूरत पड़ती है। तो गैर महरम मर्द के साथ नरमी से बात ना करें। ठीक है, अपने बच्चों के साथ नरमी से बात करें उस वक्त तक जब तक कि वो आपकी नरमी को एब्यूज करना ना शुरू, जब वो आपकी नरमी को एब्यूज कर रहे हैं तो फिर उनके साथ सख्ती से भी बात करनी है, और शायद आज के मिसाली औरत, मिसाली माँ वाले लेक्चर के अंदर वहीं से बात शुरू भी हो। बच्चों के साथ कैसे जो है वो यानी सख्ती से बात करनी है, उसी तरीके से बात नरमी से करे। अब उसके ऊपर जो है ना वो शेर साहब को भी टटोल वो तोलना शुरू कर दिया कि शेर साहब तो नरमी से बात नहीं करते हमसे, ठीक है। तो शेर साहब तो गए फिर उसके बाद यानी नजरों से ही गिर गए, ठीक है। तो भाई शेर साहब जो है वो कभी नरमी से भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है ना उसकी भी सेटिंग और कौन सी बात कर रहे हैं। तो हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक वजह होती है कि किस वक्त क्या करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे नहीं करना है। लेकिन इन जनरल यहाँ पे नरमी से बात करें इससे जो है ना वो औरत के लिए सबसे ज्यादा जो जो रेलेवेंट बात है नरमी से बात करने से मुताल्लिक वो है कि अपने शौहर के साथ नरमी से बात करें, अपने शौहर के साथ नरमी से बात, ठीक है ना। ये जो है ना वो आज के दौर के अंदर, क्योंकि ये वही फेमिनिज्म का दौर है, यू कैन हैव इट ऑल वाला दौर है, यू कैन डू इट ऑल वाला दौर भी गुजरा चला जा रहा है वगैरह वगैरह फेमिनिज्म, ठीक है। तो इस जमाने के अंदर जो है ना वो शौहर के साथ सख्ती से बात करना ये बहुत आम हो गया है या होता चला जा रहा है, ठीक है। और इसको जो है ना वो अपना हक समझ करके कर रही होती है। और जैसे कि अभी वो जो हम जुमे के बयान के अंदर हजरत की किताब से भी पढ़ रहे थे ना, ये हजरत ने भी क्या कहा था कि ये तो हमारा ना इनके साथ तो खुसूसी ताल्लुक है, इनके साथ तो दूसरे तरीके का ताल्लुक है शोहर के साथ। तो अब शोहर के साथ जो दूसरी किस्म का ताल्लुक है ना, तो उसके अंदर जो है वो अपनी तरफ से सख्ती से बात करना और बदतमीजी करना और छिड़कना और न जाने और क्या क्या चीजें जो है वो अपने लिए हलाल करनी, राइट। तो शोहर के साथ जो सख्ती से बात करना है ना, जो कि आप में से अक्सर कर रही होती है, और हमें सिर्फ आपके शौहरों ने नहीं बताया बल्कि दूसरे तरीकों से भी अल्लाह ताला दिखा देता है, ठीक है। तो जो कर रही होती है ना ये यानी इससे ज्यादा बेवकूफ औरत है कोई नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा बेवकूफ औरत कोई नहीं, चाहे वो एग्जाम के अंदर मुमताज आ जाए, चाहे वो A+ ग्रेड लेकर के आ रही हो, चाहे कुछ भी लेकर के आ रही हो ना, उससे बड़ी बेवकूफ औरत कोई और नहीं हो सकती जो कि शौहर के साथ सख्ती के साथ बात है। शैतान को मौका मिल जाता है, बल्कि शैतान ही जो है वो उससे सख्ती से बात करवा रहा होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो शौहर बीवी के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने का उसको खुली छूट मिल जाती है, फिर उसके बाद और वो बुरी तरीके से जो है ना वो ताल्लुकात खराब करता है। अभी सूरह बनी इसराइल की जो तफसीर हम पढ़ रहे हैं तो आगे एग्जैक्टली यही आयात भी आ रही है, अल्लाह ताला ने नरमी से बात करने का हुक्म फरमाया, इवन काफिरों के साथ नरमी से बात करने का हुक्म फरमाया। ऑब्वियसली उसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन काफिरों के साथ भी नरमी से बात करो। फिर ऑन को जो है वो जब मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करने के लिए जा रहे थे तो कौलन नहीं है ना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा रहे हैं कि फिरौन के साथ जाकर के नरमी से बात करना, ठीक है। तो बीवी और शौहर का ताल्लुक ऐसा सेंसिटिव ताल्लुक है और शैतान की इतनी गहरी नजर है इस ताल्लुक के ऊपर कि इस ताल्लुक को खराब करे, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, बल्कि सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है एक दुनियावी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बीवी को शौहर के साथ बात कर, ठीक है। तो 20वें पॉइंट के ऊपर आज की हम क्लास यहाँ पे रोकते हैं और थोड़े से ब्रेक के साथ इंशाल्लाह मिसाली बात की बात शुरू करते हैं। तो बात को समझ तो